37। रात को मुझको और दिनों की तरह नींद नहीं आई। प्रातःकाल से जो घटनाएं घटी थी वो बार बार मेरे आंखों के आगे नाचने लगी। इस एक दिन में कितनी उथल पुथल मच गई थी। मैं सारथी पुत्र हूँ, इस बात का दुख आज मुझको क्यों हुआ? आखिर काल क्या है? एक सारथी ही नहीं है क्या? मानव रूपी घोड़ों की पीठ पर अपने संकेतों के कशाघात करता हुआ वह कभी कभी इन घोड़ों को कितने वेग से भगाता है। आज अखाड़े में जो कुछ घटित हुआ था उसकी भविष्यवाणी कल यदि किसी ज्योतिषी ने की होती तो मैंने उस पर कदापि विश्वास न किया होता, लेकिन वह सब आज प्रत्यक्ष हो गया था। पहले क्षण लोगों ने वीर कर्ण का जय जयकार किया था और दूसरे ही क्षण सारथी का पुत्र कहकर उसको अपमानित भी किया था। जिसको सबने सारथी कहा था उसको दुर्योधन ने मित्र कहा था। दुर्योधन महाधैर्यशाली, आज मुझ पर जो अन्याय हुआ था उसका प्रतिकार करने की इच्छा केवल उसके मन में ही क्यों हुई थी? मेरे प्रति प्रेम के कारण या अर्जुन से द्वेष के कारण? कहीं भीम के ऊपर क्रोध के कारण तो नहीं? मेरे मन के विवर से संदेह के दीमक बाहर निकलने लगे। शैया पर मैं रात भर करवटें बदलता रहा, नींद नहीं आ रही थी। धमाके की आवाज़ से भड़के हुए गाय के बछड़े की तरह वह उछल कूद कर रही थी। बार बार पुकारने पर भी नेत्रों के गोष्ठ की ओर वह नहीं आ रही थी। युद्धशाला के अपने कक्ष से मैं बाहर आया। बाहर पूर्णिमा का चंद्र अपना रूपाला कुंभ धरती के चरणों पर लेर रहा था। दूर अरुंधति तारिका अपनी मिचमिचाती आंखों से पृथ्वी पर की गई चंद्र की उस मुक्त कृपा को क्रोध से देख रही थी। मेरे मन में संशय के बादल छट। गंगा की ठंडी ठंडी लहरें मेरे कंधों को झकझोरते हुए कहने लगी, चल हमारी असंख्य कन्या सिर पर रूपाले पर वस्त्र धारण करके कैसे नाच रही है देखने चल। मैंने देह पर उतरी लपेटा और युद्धशाला की चारदीवारी से बाहर निकला। अखाड़े के पीछे ही गंगा बह रही थी। जब तक किसी अशोक वृक्ष पर कोई क्रौंच पक्षी अपने पंख फड़फड़ा उठाता था, मैं गंगा के शांत किनारे पर आया। कितना विशाल था उसका पात्र। कुरुवंश की अनेक पीढ़ियां उसने देखी थी। महान परिवर्तनों के प्रतिबिंब उसके देह पर सहन किए थे, फिर भी वह शांत थी। एक काले पाषाण खंड पर बैठकर मैं उसका रूपाला मनोहर सुंदर पात्र देखने लगा। दूर कहीं से बुट बुट आवाज आई। गंगा में पानी पर झुकी हुई एक मनुष्य आकृति मुझको दिखाई दी। रात में पानी लेने के लिए यहाँ कौन आया है? मैंने जोर से आवाज देकर पूछा, कौन है? एक कंधे पर घड़ा रखे हुए एक मुखाकृति धीरे धीरे आगे सरकने लगी। मेरा कौतूहल और अधिक बढ़ गया। थोड़ी देर में एक लंबा तड़ंगा व्यक्ति मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कंधे पर घड़े के कारण उसकी गर्दन को झुक गई थी। दोनों हाथ से उसने घड़ा थाम रखा था। सामने आते हुए बोला, मैं सत्यसेन हूँ। सत्यसेन? मेरा मन स्मृतियों का वस्त्र उधेड़ने लगा। कहीं का धागा कहीं हाथ तो आ रहा था, परंतु निश्चित रूप से उसकी पहचान नहीं हो रही थी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि सत्यसेन का नाम कहीं सुना हो अवश्य। मैंने उससे फिर पूछा, सत्यसेन कौन है? मैं प्रयाग का सारथी सत्यसेन, प्रयाग गंगा यमुना का संगम। मेरा कौतूहल और अधिक बढ़ गया। मैंने फिर उससे पूछा, इस समय रात में हस्तिनापुर में गंगा किनारे पर कैसे? कौरव महाराज धृतराष्ट्र की कृति सुनी थी। हस्तिनापुर में अपने सारथ का समाधान होगा यह सोचकर आया हूँ। मेरी बहन विशाली और मेरी माता भी मेरे साथ आई है। विशाली? मेरे मुख से सहज उद्गार बाहर निकला। जी हाँ, हमें आशा था कि हम लोग दिन में ही हस्तिनापुर पहुँच जाएंगे, परंतु कापेरे नगर के घने अरण्य में हमारे एक घोड़े के पैर में मोच आ जाने के कारण हमको धीरे धीरे आना पड़ा। इस नगर में हम अभी भी आए। तो फिर हस्तिनापुर के अतिथि सत्कार का स्तर क्या इतना गिर गया है जो उन्होंने पानी लेने के लिए तुम्हें इस कुछ समय में यहाँ भेजा है? यह बात नहीं है, हम किसी के यहाँ ठहरे नहीं है क्योंकि मेरा यहाँ किसी से परिचय नहीं। माता और बहन दोनों को विष्णु मंदिर के प्रांगण में बैठा आया हूँ। यात्रा में माता को प्यास लगी थी इसलिए मैं जल लेने आया हूँ। लेकिन महाराज आप कौन? मैं महाराज हूँ, मैं कर्ण हूँ। मैंने उसका भ्रम दूर किया। कर्ण? तो क्या चंपानगरी के अधीरथ काका के वह मेरे कुंडलों की ओर देखता हुआ बोला, हाँ मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। वह मेरे कुंडलों की ओर बार बार देखने लगा। कंधे पर घड़ा रखा होने के कारण उसकी कठिनाई हो रही थी। मैंने कहा, जाओ तुम, यदि हो सके तो कल उस ओर पर युद्धशाला में आकर मुझसे मिल। घड़ा संभालता हुआ वह चला गया। उसके पैरों के नीचे बालू चूर चूर होने लगे। ठंडी हवा के झोंके मेरे शरीर से टकरा गए। कंधे सरकता हुआ उत्तरी संवारने के लिए मैंने एक छोर को हवा में उछाल कर दाएं कंधे पर डालता हुआ पीछे फेंक, लेकिन मेरी पीठ पर खट से कुछ टकराया। क्या है यह देखने के लिए मैंने उत्तरी का छोर वापस खींचकर हाथ में पकड़ लिया। उस एक गांठ में कुछ बंधा हुआ था। उत्सुकतावश मैंने झटपट गांठ खोली। वह फूटे घड़े का एक टुकड़ा था। कच्छ से बाहर निकलते समय जल्दी में मैं पुराना उत्तरी ही पहनाया था। क्षण भर को इच्छा हुई कि उस टुकड़े को नीचे बालू में फेंक दूं, लेकिन ऐसा नहीं किया। उस पर हाथ में उछालता हुआ मैं लौटाया। मेरे पैरों के नीचे बालू चूर चूर करने लगी। 38। दूसरे दिन मैंने सत्यसेन की राह देखी, परंतु वह नहीं आया। वह क्यों नहीं आया यह जानने के लिए तथा उसकी कुशल क्षेम पूछने के लिए मैंने शोण को विष्णु मंदिर की ओर भेजा। उसने लौट कर जो वृत्तांत बताया वह बड़ा हृदय विदारक था। रात को सत्यसेन गंगा तट से जब मंदिर को लौटा तो आधी घड़ी के बाद उसकी वृद्धा माता को थकावट की कारण रक्त की उल्टियां होने लगी थी। उस वृद्धा ने अपना शरीर विष्णु मंदिर के पवित्र प्रांगण में मृत्यु के अधीन कर दिया था। अपने दो बालक उसने विष्णु मंदिर के चरणों पर अर्पण कर दिए थे। सत्यसेन को वास्तव में किसी की सहायता की नितान्त आवश्यकता थी। मैंने शोण को फिर उसके पास दौड़ाया और समझा कि सत्यसेन को साथ लेकर ही लौटे। विशाल हस्तिनापुर में वह अकेला था। वह केवल संयोग था कि रात को गंगा के किनारे हम दोनों मिल गए थे। वैसे भी सदैव संयोग ही मनुष्य के जीवन का निर्माण किया करते हैं, मनुष्य केवल उनका श्रेय प्राप्त किया करते हैं।